ओम शांति। हम सभी के मध्य आदरणीय सुमन दीदी जी उपस्थित हुए हैं, हम आपका करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप पिछले 45 वर्षों से इस राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। लगभग 40 वर्षों से आपने ईश्वरीय सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित किया। वर्तमान समय आप फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आज हम सबके मध्य उपस्थित हुए हैं ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करने के लिए आदरणीय सुमन दीदी जी।
शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सब प्यारे बाबा के प्यारे प्यारे रतन हैं और ये हम सब का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रथम तो हमने अपने प्यारे जो परम रक्षक हैं हमारे, और हमको सबसे दुनिया में सबसे अधिक प्यार करने वाले पिता हैं, उनको पहचान लिया है, जो हमारे भटकते हुए जीवन को एक सही दिशा निर्देश देने के लिए इस धरा पर उपस्थित हुए हैं, हमारे जीवन की बिगड़ी हुई धारा को पुनः एक स्वर्णिम संसार की तरफ प्रवाहित करने के लिए सुंदर सुंदर ज्ञान रत्नों से हमारी बुद्धि को प्रतिदिन सिंचित करते हैं ज्ञान मुरली के आधार से, तो ये हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है कि ईश्वर ने हमको बहुत सारा इस संसार के अंदर खजाना दिया है। समय की शक्ति हमारे पास है, मन की शक्ति हमारे पास है, तन की शक्ति है, श्वासों की शक्ति है, और जो बाह्य तन मन धन ये सब कुछ शक्तियां हर मनुष्य को प्राप्त हैं इस संसार के अंदर, लेकिन इन शक्तियों के द्वारा हम अपने भविष्य कई जीवन कहें कई जन्मों की श्रेष्ठ कमाई को जमा कर लें, हम इतनी बड़ी अपने जीवन की खेती को सिंचित करें कि कई जन्मों तक हम एक स्वर्णिम जीवन जीते रहें और हम बहुतों के वृक्ष बने रहें, बहुतों के जीवन के लिए हम छत्र छाया बने रहें, ये हमारा कई जन्मों का पुण्य का खाता है जो हमें परमात्मा ने सद्बुद्धि देके, शिव बाबा ने प्यारे प्यारे बाबा ने सद्बुद्धि देके हमारी बुद्धि को गोल्डन बनाया है, सुनहरा बनाया है। आज हम सभी अपने प्यारे बाप दादा से मिलन मनाने की एक बहुत कहना चाहिए कि मीठी मीठी आश लेकर आए हैं। लोगों ने आपसे जरूर पूछा होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपने बहुत खुशी से मुस्कुरा के कहा होगा हम अपने बाबा से मिलने जा रहे हैं, हम अपने बाप दादा से मिलने जा रहे हैं, हम उस पवित्र ब्रह्मा की तपस्वी भूमि पे जा रहे हैं जहाँ जाने के लिए न जाने कितने लोग तरसते रहते हैं। हमारा कोई पुण्य उदय हुआ है कि हमें अपने प्यारे बाबा के घर में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो ये हम लोगों का दूसरा ग्रुप है। लेकिन बाबा ने जो अक्टूबर मास में विदेशी बच्चों से मिलन मनाया था, उसमें बाबा ने हमको एक बहुत अच्छी एक धारा दे दी, और वो धारा ये थी कि बच्चे तुम क्या नहीं कर सकते हो। आप कहेंगे एक साधारण इंसान क्या कर सकता है, बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, बच्चे तुम्हारे पास जो राजयोग के द्वारा मन की शक्ति प्राप्त हुई है, उस मन की शक्ति के आधार से तुम बहुत सारे बिगड़े हुए अपने कार्य को बना सकते हो। आप लोगों ने अपने जीवन में देखा होगा, क्योंकि हम सभी कलयुग के अंत के समय में खड़े हैं, अनेक आत्माएं जो हमारे संपर्क संबंध में हैं, भले वो भी अपने अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं, और न जाने आपने कितनों के साथ अच्छा व्यवहार किया होगा, शुभ भावनाएं रखी होंगी, फिर भी वो आप जो अपेक्षा रखते हैं उनसे वो प्यार आपको हो सकता है ना मिल सका हो, कहीं आपके जीवन में कांटे चुभने लगे हों, कहीं आपके जीवन में उन आत्माओं के द्वारा दुखद परिस्थिति भी आई हो, और उस समय मन के अंदर एक वितृष्णा पैदा होती है कि हम क्या करें, और हम मन ही मन बाबा के सामने कहना शुरू कर देते हैं, बाबा फलाने को तुम ठीक कर दो, फलाने को ठीक कर दो। लेकिन बाबा ने हमको इतनी अच्छी युक्ति बताई कि बच्चे, तुम्हारे पास बहुत बड़ा मन का खजाना है, जब अमृत वेले तुम बाबा की यादों में बैठते हो, उस अमृत वेले के समय में जिस आत्मा से तुम ऐसा अपेक्षा रखते हो कि उसके अंदर आपके प्रति शुभ भावनाएं जागृत हो जाएं, और जो आपसे विपरीत चल रहा है वो भी आपकी बात को मान के आपके अनुसार अच्छा व्यवहार करना शुरू करे, तो बाबा ने कहा शुभ कामनाएं और शुभ भावनाओं का बहुत बड़ा इस पृथ्वी के ऊपर कहना चाहिए कि बहुत बड़ा उनका मूल्य है। कहते हैं अपकारी के ऊपर भी उपकार करो। वो कौन सा उपकार बाबा ने बताया? बाबा ने कहा अपनी मन की शक्ति के आधार से जब अमृत वेला बाबा की यादों में हम बैठते हैं, तो उस आत्मा को सामने सामने सूक्ष्म इमर्ज करो, और आप जब परमधाम में बाबा के पास सूक्ष्म रीति से बैठे होते हैं, उस समय उस आत्मा को ऐसा आपकी मन की आंखों के आगे, आपके दृष्टि के विजन के आगे आपको ऐसा लगे वो आत्मा आपके सामने बैठी है, और आप उनको अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस देते जा रहे हैं, जो आप चाहते हैं उनके प्रति, वो उनके प्रति संकल्प प्रेषित करते जा रहे हैं, और ऐसे आप बाबा को भी याद कर रहे हैं। बाबा को याद करते करते उस आत्मा को जो शक्तिशाली वाइब्रेशंस आप देते जाते हैं, थकिए मत देने में, भले 15 मिनट उसको ये शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन दीजिए, और उसके बाद में आप अच्छा अमृत वेला एंजॉय करें, बाबा को याद करके अपने को शक्तिशाली आत्मा बनाकर याद करें, और पूरा दिन भी जब कभी उस आत्मा का संकल्प आए कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा किया, उस आत्मा को उसी समय अपना नेगेटिव संकल्प जो नकारात्मक भाव है वो रोक कर और उसके प्रति शुभ कामनाएं आप प्रेषित करते रहो। जब नेक्स्ट डे अमृत वेला हो, उस आत्मा को पुनः इमर्ज करो। ऐसे तो साय का जो समय होता है 2 घंटे का, बहुत अच्छा निमा श्याम का समय, बाबा के साथ में रिलैक्स होने का समय होता है, कि पूरे दिन का चार्ट हम बाबा के सामने रख के, और पुनः जैसे कछुआ अपनी कर्मेंद्रियों को समेट के और अपने अंतर जगत की गुफा में चला जाता है, शाम भी हम थोड़ी देर बैठ के जितना आप अपना समय निकाल सकते हैं, अपने को धीरे धीरे अंतर्मुखी बनाकर बाबा की यादों में शक्तिशाली अपने मन को बुद्धि को बनाते जाएं। लेकिन जब नेक्स्ट डे आप अमृत वेला करेंगे और फिर वो आत्मा आपको ध्यान आएगी, आज पुनः मुझे उस आत्मा को योग का दान देना है, और आप धीरे धीरे, चाहे वो आपका बेटा है, चाहे वो आपके पति हैं, चाहे वो आपके पिता हैं, कोई भी देह के संबंध है, या कोई आपका मित्र है, या कोई आपका पड़ोसी है, कोई भी है, उनको अच्छे अच्छे योग के वाइब्रेशन, बाबा की यादों के लाड कोट के वाइब्रेशन उनको देते रहिए। और आप ऐसा अनुभव करेंगे कि थोड़े ही दिन बाद यदि आपने सही रीति से उस आत्मा के प्रति शुभकामनाएं रखी हैं और अपने मन के अंदर खुद जो थोड़ी सी खटास पैदा हो जाती है, कड़वाहट पैदा हो जाती है उनके कार्य विधि के से, वो धीरे धीरे हो सकता है आपके अंदर से भी सिमटती चली जाए, और आप रिजल्ट देखेंगे थोड़े ही दिन में वो आत्मा जैसा आपने अच्छे अच्छे उनको वाइब्रेशंस दिए, वो आत्मा सकारात्मक होके आपके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देगी। मैंने इस महीने के अंदर ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए और उसके बाद में मुझे सफलता मिली और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने तो इस विधि पर ध्यान ही नहीं दिया था। तो हमारा जीवन, ये जो बाबा ने अक्टूबर मास में मुरली चलाई अव्यक्तवाणी, वो हमारे लिए एक बहुत जीवन को सहज रीति से जीने का एक कारण बन गई। ऐसे तो आप कहेंगे बाबा ने अव्यक्तवाणियों में बहुत कुछ बताया है, लेकिन जितनी ही बाबा के लेटेस्ट वाणी के ऊपर हम लोग अपना अटेंशन देते हैं, हमको बहुत अधिक शक्ति मिलती है। और बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि बच्चे पुरुषार्थ को भी खेल समझो, ऐसा नहीं समझो कि बहुत भारी तपस्या कर रहे हैं हम, बहुत भारी क्यों उसको खेल समझो, कितना भी बड़ा कार्य है, जब बाप का कार्य है तो बाप शक्ति देने वाला है। इस बारी कर्नाटक जोन का जब बाबा मिलन का टर्न था और बाबा ने एक बात एक ही लाइन कही और एक बात इतनी दिल को छूने वाली कह दी कि ऐसा लगा कि आत्मा को भगवान कितना प्यार करता है। बाबा कहता है ना, बच्चे तुम मेरे कोटों में कोई और कोई में भी कोई और पुनः कोई में भी कोई एक आत्मा हो, तो भगवान ऐसा क्यों कहता है। और अगर हम लोग उसका रहस्य निकालें तो हमको मालूम होगा कि भगवान हमको कोटों में कोई कह के हमको इतना प्यार कर रहा है और वो तैयार है हमारा सारा बोझ उठाने के लिए। तो बाबा ने इस बारी बहुत अच्छी लाइन कही, बच्चे कितनी भी तुम समस्या में फंसे हो, बच्चे कितनी भी परेशानी में तुम हो और क्या भी कठिन परिस्थिति हो तुम्हारे सामने, लेकिन तुम बाबा को देखे और मुस्कुराते रहो। मेरा तो बाबा की बस इस दो लाइन के ऊपर बहुत अटेंशन गया और मैंने अपने अंदर ये सोचा, ये बाबा ने हमको होमवर्क दिया है, कितनी भी परिस्थिति आए, कितना भी कठिन कार्य हो, उसको बाप को दे दो और मुस्कुराते रहो। क्यों बाबा ने कहा मुस्कुराते रहो, है ना, जैसे बाबा कहते ना तुम चिंता नहीं करो, बच्चे में बैठा हूं, तो मुस्कुराते रहो क्यों, हो गया डन। तो हमने इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करके देखा, कोई भी कठिन परिस्थिति आई, कोई भी कठिन बात आई हमारे सामने और एकदम हमको याद आ गया, बाबा ने तो कहा है ना, बच्चे ये जो परिस्थिति आए, जो ऐसी समस्या आए, बाप को दे दो। तो जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसे ही मन के संकल्प को किधर ट्रांसफर कर दिया, बाबा ने कहा है ना, बाबा को ट्रांसफर कर दिया। बाबा ऐसी बात है, बाबा ऐसी बात है, और मन को कैसा कर लिया, रिलैक्स कर लिया। बाबा ने कहा है ना, मुस्कुराते रहो, वेट एंड सी, मुस्कुराते रहो। और सचमुच इतना आश्चर्य लगता है ना। अभी देखो, दादी जानकी ने उस दिन क्लास कराई तो बहुत अच्छी बात बताई कि बड़ी दीदी कहती थी, बाबा सेवा देता है तो शक्ति भी देता है। बाबा केवल सेवा नहीं देता है, सेवा देता है तो शक्ति भी देता है। तो बाबा ने आपको क्या सेवा दी है, विश्व परिवर्तन की। विश्व की जो दुखी आत्माएं हैं, जो भटकती आत्माएं हैं, उनको बाप का संदेश देके क्यों संदेश देना है, किस लिए संदेश देना है, कि अगर उनको बाप का सहारा मिल जाएगा, बाप का परिचय मिल जाएगा, तो वो आत्माएं भी अपने दिल के दुख को हल्का कर सकेंगी, वो आत्माएं भी अपना जो खोया हुआ भाग्य है वो बना सकेंगी, वो आत्माएं भी जो रास्ता भटक गई हैं और जो उनके पास इतनी सारा तन मन धन समय संकल्प स्वार्थों की संपत्ति है, जो उनकी वेस्ट जा रही है, बेकार जा रही है, उनको ज्ञान की रोशनी मिलने से वो भी बाप के आगे समर्पित होके अपने जीवन का भाग्य पुनः कई जन्मों तक के लिए जगा लेंगे। बाबा ने कहा ना, बच्चे सब तुम्हारे भाई हैं, क्या तुम्हारे दिल में तकलीफ नहीं होती है, रोती हुई आत्माओं को हंसाने की क्या तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है क्या। तो हमारे को बाबा ने कितना अच्छा कार्य दिया हुआ है कि बच्चे तुम विश्व परिवर्तक आत्मा हो, तुम विश्व के आधार मूर्त आत्मा हो। इतने बड़े बड़े टाइटल बाबा ने यूं ही दे दिए क्या, क्यों दे दिए। भगवान ने हमको उतना लायक समझा, अपनी नजरों के लायक समझा। ये हमारा एक भाग्य है कि प्रभु ने हमको अपनी नजरों के लायक समझा और उसने अपने लिए चुन लिया। क्यों चुन लिया, उसको जरूरत थी इसलिए चुन लिया। वो तो थी जरूरत, बाप को अपने बच्चे चाहिए। देखो बाबा ने मुरली में कहा ना, बाप जहाँ होगा बच्चे भी होंगे, बाप को बच्चों का प्यार खींचता है और बच्चों को बाप का प्यार खींचता है। तो इस समय परमात्मा ने हमको क्यों चुना, हमारा भाग्य जगाने के लिए। भगवान जो पिता है हमारा, परम शिक्षक है, सतगुरु है, उसको हमारे भाग्य के ऊपर तरस आता है। मैं तो अपने बच्चों को भाग्य बांटने वाला हूँ, भाग्य विधाता हूँ, और ये बच्चे कहीं अंधेरे में छुप के पड़े हुए हैं और अपना भाग्य बनाने से वंचित है। इसलिए भगवान हम बच्चों को ये कार्य दे के बैठे हैं। बच्चे हर एक आत्मा को बाप का संदेश जरूर देते रहो, और जितना जितना हम उनको अपना बाप का परिचय देते रहेंगे तो क्या होगा। देखिए आप लोग एक बात भी और गहराई से समझिए। बहुत से लोग कहते हैं हमको शिवानी बहन की क्लास बहुत अच्छी लगती है, जितने भी टीवी पर बहुत बाबा के घर से दूर हैं, लेकिन वो टीवी पर शिवानी बहन की क्लास देखते हैं, उनको अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि जीवन के व्यवहार से संबंधित वो क्लास है। तो इस संसार में इंसान जो है वो केवल सुनना ही नहीं चाहता है, वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ को देख कर भी मुड़ जाता है, है ना। बाबा कहता है बच्चे तुम म्यूजियम बनकर इस विश्व के अंदर घूमो। तो म्यूजियम कैसे बनेंगे? जब हमारा ये लक्ष्य होगा कि हमारा जो दूसरों के प्रति दृष्टिकोण है वो बहुत रहम दिली, बहुत पवित्र और उनके प्रति बहुत स्नेह की भावना का दृष्टिकोण हो, भाव और उनके उनको जागृत करने के लिए उनके लिए थोड़ा सा समय भी देने का, दान करने का हमारे दिल में जगह हो, तो धीरे धीरे क्या होता है हमारा योग बल भी बढ़ता चला जाता है। आप देखिए जो बाबा की साकार मुरलियां आजकल आ रही हैं, उसमें अधिकतर बाबा पूछता है बच्चे अपना चार्ट देखो। हमने अपने को बाबा की यादों में कितना कितना रखा हुआ है, कितना हम बाबा को याद करते हैं, क्यों याद करना है? बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं क्यों बाबा को याद करना है, तो उसके उत्तर बहुत सारे हैं। बाबा को याद करेंगे आत्मा के पाप धुलेंगे, बाबा को याद करेंगे हमारी बुद्धि अच्छी होगी, है ना, बाबा को याद करेंगे तो हमारे अंदर खुशियां आ जाएंगी, बाबा हमारा साथी है तो हम शक्तिशाली बन जाएंगे। लेकिन बाबा की याद से जो आत्मा बाबा की गहरी याद में रहती है, जैसे आप देखो अपने साकार बाबा ब्रह्मा बाबा, उन्होंने अपना केवल तन मन धन ही न्यौछावर किया बाबा के ऊपर, लेकिन क्षण क्षण बाबा की श्रीमत को मान के सेकंड सेकंड बाबा को याद करने के अभ्यास में लीन रहते थे ब्रह्मा बाबा। यहां तक कि अपने जो जगदीश भाई होके गए हैं, अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ा है, लेकिन जगदीश भाई ने अपने अनुभव में बताया था मुझे बाबा से बहुत ज्यादा प्यार था, तो रात में जब नींद नहीं आती थी मैं बाबा के कमरे में जाता था, 11 बजे जाता था तो बाबा बहुत प्यार से बाबा की याद में बैठते थे, बैठे होते थे, और चारों तरफ वातावरण बहुत शक्तिशाली होता था। कभी 2 बजे जाता था तो बाबा की याद में बाबा बैठे होते थे। तो ये बात क्या शो करती है कि ब्रह्मा बाबा जो अटूट रीति से बाबा की यादों में डूबे रहते थे, उस याद की शक्ति ने ब्रह्मा बाबा के अंदर मैग्नेटिज्म तैयार कर दिया था। मैग्नेटिज्म माना चुंबकत्व शक्ति तैयार कर दी थी, और यही कारण था कि ब्रह्मा बाबा के सामने या मम्मा के सामने कोई आत्मा भी आती थी वो खुद को भूल जाती थी, अपने आत्म स्वरूप की गहरी अनुभूति में चली जाती थी, और साथ ही उसके अंदर कितना भी अवगुण का कड़ा संस्कार होता था वो आत्मा पिघल जाती थी। एंड सरेंडर टू गॉड, शिव बाबा के लिए समर्पित होने को तैयार हो जाती थी। उनको बाबा कुछ कहता नहीं था, मम्मा किसी को कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उनके योग की शक्ति उस आत्मा की मनोदशा को बदल देती थी, और वो आत्मा एक अच्छा इंसान बनके जीवन जीने लगता था, राजयोगी बनके जीवन जीने लगता था। आज हम भी मम्मा बाबा के नक्शे कदम पर यदि संकल्प कर लें कि कुछ भी हो जाए, ये जो जीवन है ये तो यूं ही वैसे भी चला जाना है, एक दिन इसकी सांसें पूरी हो जाएंगी और वैसे भी खत्म हो जाना है, तो क्यों नहीं ये जो बचे हुए जीवन है, बाबा कहते हैं ना बच्चे अब समय बहुत थोड़ा है, क्यों नहीं इस बचे हुए जीवन के क्षणों में हम इतना पुरुषार्थ करें, जैसे बाबा ने देखिए ना 60 वर्ष की अवस्था में शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया था, लेकिन उस ओल्ड एज में भी बाबा ने अथक पुरुषार्थ किया, यज्ञ को भी संभालते थे लेकिन अपना सेल्फ का पुरुषार्थ भी ब्रह्मा बाबा को बहुत गहरा था। तो हम भी अपने इस बचे हुए समय को व्यर्थ में क्यों लगाएं? ये हम अपने अंदर से दृढ़ संकल्प करके ही जाएं मधुबन से कि हम बाबा के हीरे बच्चे तो है ही हैं, लेकिन हमें कोहिनूर हीरा बनना है और बहुत ऊंची आत्मा, हम अपने जीवन को इतना महत्वपूर्ण बना दें बाबा की याद से, इतना मैग्नेटाइज्ड कर दें कि दूसरी आत्माओं को दूर बैठे भी बाप का साक्षात्कार हो और उनके जो दुख के समय हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो समाप्त हो जाएं और वो बाबा के करीब आ जाएं। बाबा ने कई बार मुरलियों में बताया, बच्चे अंत के समय में तुम्हें दूसरों को ज्ञान सुनाने का भी नहीं समय मिल पाएगा, लेकिन जो तुम्हारी मनसा शक्ति है, जो तुम्हारी योग की सकाश है, उन आत्माओं को बाबा से प्रीत बुद्धि बना देगा। तो हमारे साथ यदि उपकार करने की ये जो अच्छे अच्छे संस्कार हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा के अंदर थे जिसको हम श्रेष्ठ गुण कहते हैं, दूसरों के लिए श्रेष्ठ भावनाओं के जो संस्कार हैं, वो हमें जीवन की रक्षा, स्वयं की भी जीवन की रक्षा, दूसरों की भी जीवन की रक्षा करने का एक कारण बन जाता है। आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी कि एक पेड़ पर दो पक्षी, बहुत छोटे छोटे मासूम से पक्षी बैठे हुए थे, तो ऊपर से चील मंडराती हुई आई, उसने कहा ये तो मेरा बहुत अच्छा शिकार है, और उसने मंडराना शुरू कर दिया, लेकिन वो मासूम जो पक्षी बैठे थे उनको नहीं मालूम था कि हमारे ऊपर खतरा है। उधर कहीं से घूमता घामता एक बहेलिया आया और उसने देखा कि ये पक्षी तो बहुत सुंदर हैं, इनको ही आज मैं अपना शिकार बना लेता हूं। वो उनके ऊपर निशाना साध ही रहा था, तब तक उसी पेड़ की बांगी में एक सांप रहता था, बूढ़ा सांप, और वो जो बूढ़ा सांप था उसके लिए वो दोनों पक्षी कहीं कहीं से कुछ अन्य के दाने या कुछ उसके लिए ले आते थे और उसकी बांबी के पास रख देते थे, बाद में खुद जाके अपने लिए ले आते थे। तो सांप उनके प्रति हितैषी था। सांप ने जब देखा ये जो बहेलिया है ना, ये मेरे दोनों ये जो प्यारे प्यारे पक्षी हैं इनको मार डालेगा, वो अपनी बांबी से बाहर निकल के आया और उसके पेड़, उसने आप समझ सकते हो उसने क्या किया होगा, उसने उसके पैर में काट लिया, बहेलिया का निशाना चूक गया और बहेलिया का जो तीर था वो किसको लगा, चील को लगा। अभी आप देखो वो दोनों पंछी जो थे वो बच गए। तो क्या कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो ऐसे ही हमारा ये जो जीवन है इसको हम जितना परिष्कृत कर लेंगे, जैसे आज हम देखते हैं हमारी संस्था की दादी जी बड़ी दादी जी होके गई, वैसे तो प्रकाशमणि दादी के नाम से जानते हैं, उनका हृदय, उनके नेत्र, उनकी वाणी इतनी इतनी कहना चाहिए कल्याणकारी थी कि हम कितना भी दूर से थके हुए आते थे दादी से मिलके भाग के जाएंगे मिलने के लिए, नहा धो के दादी के पास जाएंगे और दादी की एक दृष्टि मिलते ही हमारी थकान दूर हो जाती थी। ऐसा लगता था हमारा हमारा कोई मिल गया है। आज दादी जानकी के सामने हम जाते हैं तो उनके अंदर जो योग की चुंबकत्व शक्ति है, आत्मा की टेंशन को, उनकी एक दृष्टि आत्मा के टेंशन को खत्म कर देती है। आज आपका सौभाग्य होगा या होगा समय तो आप जरूर दादी का को भी मिल सकेंगे या दादी की क्लास मिलेंगी आपको। तो कहने का मतलब है जीवन को ईश्वर के इशारों पे चलाने से हमारी भी रक्षा होती रहती है, हमारा पुण्य का खाता बनता चला जाता है, हमारे अंदर से वैमनस्य की भावना निकलती जाती है और हम अपने लिए एक कहना चाहिए चुंबकत्व वाला व्यक्तित्व हमारा तैयार होता जाता है और धीरे 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 हम इस समाज के लिए एक बहुत उपयोगी इकाई बनते चले जाते हैं। तो ऐसा कहेंगे भगवान के लिए कहते हैं, शिव बाबा के लिए कहते हैं, वो प्यार का सागर है। आप देखो आज ब्रह्मा बाबा ने कितना बड़ा, बाबा के प्यार के जो उनको वाइब्रेशंस मिले, पहली दृष्टि मिली शिव बाबा की, कितना बड़ा जीवन का त्याग कर दिया ब्रह्मा बाबा ने। आज ब्रह्मा के पीछे जो ब्रह्मा के वत्स हैं उनको कोई कहता नहीं है कि तुम कुछ करो, उनको बाबा से जो प्यार मिला है, बाबा से जो शक्ति मिली है शिव बाबा से, उसने उनके जीवन को त्यागी बना दिया, तपस्वी बना दिया, योगी बना दिया। ऐसे तो लोग दुनिया में कहते थे योगी बनना बहुत कठिन है, त्याग करना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप लोग त्यागी भी बन गए, योगी भी बन गए और निर्विकारी बनने के लिए तपस्वी भी बन गए। बोलो आपको कुछ कठिन लगा क्या? नहीं, क्यों नहीं कठिन लगा? और फिर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र जीवन जीना कुछ आपको कठिन लगा क्या? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपको उस परम श्रद्धे पिता का जो सुबह आशीर्वाद प्रतिदिन मिलता है, जो प्यार का सिंचन मिलता है, वो जो आत्मा को गदगद कर देता है, आत्मा को खुशी से भरपूर कर देता है, तो प्यार से शिव बाबा ने कितने बच्चों का दिल जीत लिया। और वो जो दिल जीत लिया बाबा ने तो स्वतः ही उनके जीवन में सेवा आने लगी, त्याग आने लगा, तपस्या आने लगी। बोलो तो बाबा ने सब सहज कर दिया ना? तो आप सोचो प्यार जीवन की धारा को बदल देता है, इसने जीवन की धारा को बदल देता है। हम जब सड़क पर चलते हैं तो एक बोर्ड लगा रहता है, स्टॉप वेट एंड सी. क्यों लगा रहता है? थोड़ा सा संभल के चलो. इसी तरह से सामने वाला व्यक्ति, भले वो आपके सामने कैसा भी बोल रहा है, लेकिन एक गुड एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो तुरंत उसका उत्तर नहीं देगा, उसकी हर धारा को समझेगा और फिर अपने मन में च्यूइंग करके वो सोचेगा कि मैं इसको क्या बोलूं कि इसका जो आवेश है वो खत्म हो जाए. तो आप देखिए, कोई कितना भी घबराया हुआ व्यक्ति होगा, कितना भी परेशान व्यक्ति होगा, लेकिन आप उसको धैर्य बस कोई बहुत अच्छा उत्तर देंगे, अपनी शांति को मेंटेन करके रखेंगे, उसका जो अंदर का तूफान है वो भी शांत होता जाएगा, बात बिगड़ती हुई बन जाएगी, है ना. तो कहते हैं युद्ध कहाँ से शुरू होता है? युद्ध वेपन से नहीं शुरू होता है. युद्ध पहले कहाँ शुरू होता है? मन के अंदर शुरू होता है युद्ध. और यदि उस मन के अंदर शुरू होने वाले युद्ध की हमको रेमेडी मालूम हो, रेमेडी मन दवा मालूम हो कि इस तरह का तूफान हमारे मन के अंदर आ रहा है, अगर आप उसे बढ़ता रहने देंगे तो आपकी रात की नींद खत्म हो जाएगी, आपका दूसरों के साथ व्यवहार खराब हो जाएगा, चिड़चिड़े हो जाएंगे, दूसरे भी सोचेंगे क्या हो गया आपको, क्यों आप उदास हो गए. लेकिन जो मन के अंदर तूफान है उसकी रेमेडी आपके मन में ये आ गई. बाबा ने इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमको ज्ञान की ये विधि बताई है और आपने उसको अपने मन के अंदर अप्लाई करना शुरू कर दिया, धारण करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो तूफान जो है वो धीरे धीरे सोडा वाटर हो जाएगा, आपके मन में शीतलता आने लगेगी और आप धीरे धीरे एक सफल व्यक्तित्व के व्यक्ति बन जाएंगे. तो आप अपने से पूछो कि आप क्या चाहते हैं. आप तो जरूर चाहते होंगे सभी कि जैसे बाबा हमको प्यार करता है बहुत अधिक, सभी कहते हैं ना बाबा हमको बहुत प्यार करता है, कहते हैं ना आप सब कि बाबा हमको बहुत प्यार करता है, कहते हैं ना आप लोग माताएं, कहते हैं ना बाबा हमको बहुत प्यार करता है. कोई नहीं कहेगा कि तुमसे बाबा हमको कम प्यार करता है, सब कहेगा तुमसे हमें बाबा ज्यादा प्यार करता है, कहते हैं ना. तो आप सब अपने मन के अंदर खोज के देखो कि जैसे बाबा हमको बहुत प्यार करता है तो कितनी खुशी होती है ना. और यदि तो आप ये भी चाहते होंगे कि जो भी इंसान हमारे जीवन के सफर में सामने आए वो भी हमें बहुत प्यार की दृष्टि दे, सम्मान दे, हमें खुशी दे, हमारे साथ सहयोगी बने. लेकिन उसके लिए आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं, है ना. दूसरों से तो आप चाहना रखेंगे. तो एक बात बाबा ने बहुत अच्छी सिखाई, गिव एंड टेक. यदि आपको प्यार चाहिए तो दूसरों को कौन सा प्यार देना शुरू करें? रूहानी प्यार देना शुरू करें, श्रेष्ठ वृत्ति का प्यार देना शुरू करें और श्रेष्ठ कृति का प्यार देना शुरू करें, है ना. समाने की शक्ति की ऐसे टाइम पर बहुत जरूरत पड़ती है और इवन सहन करने की शक्ति भी जरूरत पड़ेगी. सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर समझदारी होना बहुत जरूरी है. तो जब आप धीरे धीरे दूसरों को सम्मान देना शुरू करेंगे, कोई सम्मान देना माना नहीं कि किसी को चेयर दे दी हमने तो सम्मान दे दिया, नहीं, उनके वाइब्रेशन को सम्मान देना, उनको ऐसा कुछ ऐसा हम ना बोलें जिससे उनको थोड़ा सा कष्ट हो। ब्रह्मा बाबा की तो कहानी आपने सुनी होगी कि बाबा ने अपने परिवार में किसी को स्टेप मदर बोल दिया था और बाबा को लगा कि इसको मेरे इस कहने से दुख हुआ होगा। बाबा ने उस दिन खाना नहीं खाया, लेकिन दूसरे दिन सुबह ही जाकर जब उन्होंने उनसे क्षमा मांगी, उन्होंने कहा नहीं मेरे मन में तो कुछ भी नहीं आया। तो बाबा ने कहा नहीं आपके मन में आया तो जरूर था, कहां थोड़ा सा आया था। बाबा ने कहा मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। सोचो ब्रह्मा बाबा कितने बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। हम भी अपने से पूछें कि क्या हम दूसरों से सम्मान नहीं पाना चाहते हैं या दूसरों से हम स्नेह नहीं पाना चाहते हैं, लेकिन पाने की चाहना न रख के यदि हम अपने अंदर इस बात का एक आधार बना ले, एक लक्ष्य रख ले कि हमें तो देना है, दूसरे को प्यार देते चलो, कौन सा रूहानी प्यार देते चलो, संसार जैसा प्यार नहीं रूहानी प्यार देते चलो, दूसरों को सम्मान देते चलो, चाहे कोई छोटा है चाहे बड़ा है, ताकि उसके हार्ट को कोई हर्ट ना हो। प्यार से उसको कोई बात कहनी भी है, कोई गलती पे भी है, तो भी उसको वो बात कहो ताकि वो अपने में परिवर्तन कर ले। अगर वो नहीं कर सकता है तो उसका कोई ऐसा वे निकालें कि उसको हर्ट ना हो कोई। तो आप देखिए आप सफल व्यक्तित्व के धनी बन जाएंगे और आपको बाबा से योग करने में बहुत बहुत इजी लगने लगेगा। तो जरूरी है अगर हम टेंशन फ्री बनना चाहते हैं तो बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा आज हमारी दादियां हैं, कितनी फूल जैसी दादियां हमारी हैं। हम तो कहते हैं हमारी दादियां हमेशा हम लोग के सामने रहे कि कितना दूसरों के हितों का ध्यान रखते हैं, विश्व की आत्माओं को कितना योग का दान देते हैं। हमारा जीवन और है किस लिए? ऐसे ही हम भी अपने परिवार में रहते हुए, अपने जिस संसार में हम रह रहे हैं, हम धीरे धीरे इन बातों का बहुत ध्यान रखें कि दूसरों के हितों का ध्यान रखते हुए हम दूसरों के प्रति जो बाबा अक्सर करके मुरली में निकाल रहे हैं, बच्चे हर आत्मा के प्रति शुभ भावनाओं का दान दो, शुभ भावना रखो, शुभ व्यवहार करो, शुभ वाणी बोलो, शुभ कृति करो। तो आप महसूस करेंगे बाबा ने बहुत शुरू में ही हमको बताया था, बच्चे हमेशा ये समझो अकल्याण में भी कल्याण समझो। तो आप कभी जल्दी परप्लेक्स नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, इरिटेट नहीं होंगे। कितनी भी ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपको लग रहा है कि हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन आप ये सोचो इसमें भी कुछ कल्याण भरा होगा, है ना। तो इसलिए बाबा का जो मुरली है, मालूम है वो साधारण नहीं है मुरली। आज देखो आप बाबा के बच्चे मुरली नहीं छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ते मुरली? क्योंकि मुरली में एक एक भगवान का वाच जो है वो अकाट्य है और हमारे लिए बहुत बहुत कल्याणकारी है और बहुत बहुत सुखदायी है, भाग्य को प्रदान करने वाला है। हमसे तो अक्सर करके हमारे भाई बहने बोलते हैं, दीदी हमारे मन के अंदर कोई प्रश्न होता, हमारी कोई समस्या होती है, लेकिन जब हम मुरली सुनते हैं बाबा उस दिन हमारा हल बता देता है। तो इसीलिए तो भगवान को सर्वज्ञ कहते हैं ना, वो हरेक के मन की बात को अनुसार मुरली में उत्तर उनको मिल जाता है। तो आज हम इस बात में सफल राजयोगी बनने का संकल्प लें बाबा की यादों में, कि हमें बाबा ने जैसे इस साल के अंदर पिछले साल भी बाबा ने अव्यक्त वाणियों में हमको एक होमवर्क दिया था. क्या दिया था? व्यर्थ को स्टॉप करना है, व्यर्थ कर्म करना छोड़ दो. मतलब जिस कर्म करने से टाइम वेस्ट हो रहा है, व्यर्थ कर्म नहीं करो, व्यर्थ वाणी नहीं बोलो, व्यर्थ संकल्प नहीं करो. क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये जो पुरुषोत्तम युगी जीवन है ये बहुत कीमती है. और ये जो तुम्हारा कीमती जीवन है इसमें तुम्हें वक्त है कम, करना और चलना बहुत दूर है, बहुत बहुत सारा पुरुषार्थ करना है. इसलिए आप अपने मास्टर खुद हैं और आप जितना जितना अपने ऊपर अटेंशन देंगे कि कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, जैसे बाबा अक्सर करके कहते हैं ना, बच्चे 20 शब्द आपके सामने हैं लेकिन उसका उत्तर 2 शब्दों में देकर अपना समय बचा लो. थोड़े से शब्दों में बात करके बात को पूरा करो, अपना समय बचाओ. क्यों अपना समय बचाओ? क्योंकि तुम्हारा समय तुम्हें शक्तिशाली बनाने के लिए है. है ना, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ हमारा इतना बड़ा मेहमान इस दुनिया में आया है, कितना कितना सुंदर, मतलब कितना कल्याणकारी, कितना शक्तिशाली है. है ना, हम सब एक एकांत में बैठ जाएं और केवल उसको ही देखें, केवल उसको देखें. क्यों उसको देखें? क्योंकि वो उसको एक सेकंड याद करते हैं तो न जाने आत्मा में कितना कितना भाग्य जमा हो जाता है, कितना उसका पाप दग्ध हो जाता है, कितनी आत्मा खुशहाल हो जाती है, उसके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं. लेकिन फिर भी हम देह और देह के संबंधों के जो कारोबार है, अपनी देह की कारोबार है और कारोबार है, उसमें समय जाने से कहते हैं बाबा भूल जाता है. कहते हैं ना, बाबा भूल जाता है. तो इसलिए हम अपने अंदर, आप सभी ने इतने दिन से क्लासेस भी बहुत सुन रहे होंगे, कि हम अपने अंदर इस बात का बहुत ध्यान रखें, जीरो बनेंगे तो हीरो बन जाएंगे. आत्म स्वरूप का चिंतन करना बहुत जरूरी है. जिस समय हम राजयोग की यात्रा में बैठते हैं तो अपने को एकाग्रचित हम कैसे बनाएं? या हम अपने को शक्तिशाली आत्मा कैसे बनाएं? राजयोगी हम अपने को कैसे बनाएं? उसके लिए पहला स्टेप यही है, धीरे धीरे जो बाह्य देह का आवरण है उसमें ही तो हमारी स्मृति चली गई है ना, तो अपने मन और बुद्धि को धीरे धीरे बाह्य आवरण से उपराम करते जाते हैं और अपने मन के अंदर भ्रकुटी के मध्य में एक विजन क्रिएट करते हैं, एक दृश्य क्रिएट करते हैं कि मैं इस देह से अलग एक चैतन्य ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा और मैं अपने में कौन हूं. है ना, अगर आप अपने में कौन का शब्द लगाएंगे तो आपको बहुत सारे उत्तर मिलेंगे. मैं कौन हूं, तो आपको लगेगा इस विश्व रंगमंच पर मैं एक विशेष आत्मा हूं जिसको ईश्वर ने चुना है. मैं एक वो विशेष आत्मा हूं जिसके कंधों पर ईश्वर पिता ने विश्वास रखा है कि इस आत्मा के द्वारा मुझे विश्व के परिवर्तन का, विश्व को श्रेष्ठ बनाने का कर्तव्य कराना है. मैं वो आत्मा हूँ इस विश्व रंगमंच पर जिसके द्वारा सत्य धर्म का कार्य होना है. है ना, तो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ कहते हुए एकदम आपके सामने एक ग्लिम्स आएगी दैट आई एम अपार्ट फ्रॉम दिस बॉडी, शरीर से अलग मैं एक चैतन्य ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ. लेकिन मैं एक बहुत ऊंची स्थिति वाली आत्मा हूं। कौन सी स्थिति की आत्मा हूं? कि जिसको अभी जिसका इस सृष्टि मंच पर पार्टी है, कुछ श्रेष्ठ करके अपना भी श्रेष्ठ भाग्य बनाना और दूसरों का भी श्रेष्ठ भाग्य बनाना। मैं वो श्रेष्ठ आत्मा हूं जिसको ईश्वर की नजरों का प्यार मिल रहा है। मैं वो श्रेष्ठ आत्मा हूं कि मुझे मेरा घर परम धाम का इस रास्ता मिल गया है, और मैं सेकंड में मन और बुद्धि के आधार से उस पवित्रतम धाम में जाके कितना भी देर मैं आत्मा अपने को बैठा सकती हूं। मैं वो आत्मा हूं जिसको जो सत्य स्वरूप, जो ज्ञान का सागर, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने वाला बाप ने ज्ञान देकर जिसकी बुद्धि को ज्ञान युक्त और योग युक्त बना दिया है ना। ऐसे अपने से अपना बुद्धि का बहुत विस्तार करना चाहिए। मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं वो आत्मा हूं जो सत्य की दुनिया के लिए ईश्वर पिता ने मुझे एंटाइटल किया है कि बच्चे तुम जाकर स्वराज्य पद राज्य भाग प्राप्त करने वाली आत्मा। इसी तरह से फिर जब आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते चले जाते हैं, शिव बाबा के जब आप सामने महसूस करते हैं कि आप बाबा के सामने बैठे हैं, तो आपको लगेगा कि बाबा का भी महिमा मन में चलना शुरू हो जाएगी। कैसे महिमा चलती है? परमात्मा कौन है? कोई साधारण हस्ती नहीं है, सारी कायनात का पिता है, सारे विश्व का पिता है। उसके हाथ में सारे विश्व का विधान भरा हुआ है, सारे विश्व को परिवर्तन करने वाला, सारे विश्व की आत्माओं का पिता, सारे विश्व की आत्माओं की नजर उसके ऊपर है, उनका संरक्षक, उनका पिता, उनको प्यार करने वाला, उनको शक्ति देने वाला, उनका शिक्षक, मेरा पिता वो है। तो देखो बाबा की कितनी दिल में महिमा आती है। मैं कोई साधारण पिता की बच्ची नहीं हूं। किसकी हूं? सारे विश्व के पिता की मैं संतान हूं। तो देखो आपको कितना नशा अंदर से आएगा, मैं उसकी संतान हूं। और जब आप बाबा के सामने जाएंगे और बाबा के सामने बैठेंगे, आप उसकी हाईनेस से इतना अपने को भरपूर महसूस करेंगे कि आपको लगेगा कि अरे मैं किस बड़ी हस्ती के सामने मेरे को बैठने का मौका मिला है। और बाबा से आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करना शुरू करेंगे, मीठी मीठी बातें करना शुरू करेंगे। और कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप लोगों ने देखे होंगे फोटोज वगैरह आर्ट गैलरी में, बहुत दो नेत्र हैं, उनके अंदर बहुत साइलेंस की शक्ति भरी है ना, या उनके अंदर बहुत प्रेम की शक्ति भरी है। ऐसे ही हम जब योग युक्त अवस्था में बाबा के पास जाते हैं, तो ऐसा लगता है बाबा की दो नजरों में, दो नैनों में छोटे छोटे दो प्यार के आंसू आ गए हैं, और बाबा उस प्यार की नजर से अपने उन आंखों में मुझे बसा के जैसे बहुत प्यार कर रहा है। आप सोचो तो अंदर से क्या आना चाहिए कि मेरा कई जन्म तो देह और देह में उलझते उलझते हो गया। अभी इस जन्म में मैं उसके साथ एंजॉय कर लू, ऐसा प्यार और कहां मिलेगा, ऐसी शक्ति और कहां मिलेगी, और ऐसा संरक्षण और कहां मिलेगा। तो ऐसे ऐसे बाबा की यादों में अपने को डुबोते डुबोते आपको लगेगा कि धीरे 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 आपके जो पुराने संस्कार हैं, कभी कभी हो सकता है आप अपने पुराने संस्कारों से भी परेशान होते रहते होंगे, लेकिन बाबा ने कहा आप अपने लिए भी निगेटिव नहीं सोचो। देखिए, हम अगर अपने लिए निगेटिव बातों को सोचते रहते हैं तो भी हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और अगर हम अपने को सोमान में स्थित करते जाते हैं तो हम फूल की तरह सदा खिले हुए और खुशी में डांस करते रहते हैं। अभी आप अपने से पूछो आप कैसे रहना चाहते हो, खुशनुमा चेहरा बना के रहना चाहते हैं ना, कैसे रहना चाहते हैं, खुशनुमा चेहरा। तो खुशनुमा चेहरे के लिए ना दूसरों की गलतियों को देखो, है ना, आए भी तो सोचो ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, छोड़ते जाओ, लिव इट। और अपनी को भी कमजोर आत्मा नहीं सोच के ये सोचो मैं प्रभु की नजरों में श्रेष्ठ आत्मा हूं, और अपने अंदर एक हिम्मत भरते रहना चाहिए, अपने को अपना ही मास्टर बन के बहुत हिम्मत देते रहना चाहिए। किस लिए हिम्मत देते रहना चाहिए, ताकि आप जितना आपके अंदर पॉजिटिविटी की एनर्जी होगी, अपने प्रति अच्छा सोचने की एनर्जी होगी, आप दूसरों के साथ भी आपके बोल आपका सोच उनको भी एनर्जेटिक बनाते चलेंगे। आज के आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर डिप्रेशन बहुत रहता है, डिप्रेशन की बीमारी है। ये डिप्रेशन की बीमारी क्या है, गलत सोच, और ये डिप्रेशन इंसान को बहुत परेशान कर डालता है ना, अपने लिए साइकोलॉजिकल गलत सोचते रहना, ये डिप्रेशन है। लेकिन अगर हम रोज बाबा की प्रतिदिन मुरली सुनते हैं और अपनी टीचर बहन के साथ भी थोड़ा सा अगर कुछ हमारी अंदर से उलझन है तो उनसे भी हम थोड़ा परामर्श कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर डिप्रेशन नहीं रखें। और ही बाबा ने जैसे कहा ना, अभी हमने आपको बताया कि पिछली मुरली में बाबा ने कहा कोई भी उलझन हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी बात हो, सेकंड में बाबा को ट्रांसफर कर दो, बाबा तुम ले लो, एंड वेट एंड सी, मुस्कुराते रहो। तो जितना जितना हम बाबा को ने जो हमें सिखाया है ना, ना अपने को बुरा देखो ना दूसरे को बुरा देखो, अपने को भी हमेशा अच्छी स्थिति में देखो, है ना, जैसे कहते हैं सकारात्मक अपने अंदर सोच शुरू कर दो, मैं जो हूं उस स्टेज में बहुत अच्छा हूं, जहां हूं मेरा बस वहां पर पार्ट बहुत अच्छा है, है ना। तो जितना जितना अपने में पॉजिटिविटी भरते चले जाएंगे उतना उतना आपका बाबा के साथ अच्छा कम्युनिकेशन होता जाएगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप अपने मन को बहुत पेशेंस में रखते हैं तो आपको खुद महसूस होगा कि बाबा की टचिंग कभी कभी मिलती रहती है। जैसे दादी जानकी जी बताते हैं, मुझे संकल्प आता है और टचिंग बाबा की मिलती रहती है, ये काम ऐसे करना, ये काम ऐसे करना है ना। तो हमारा बुद्धि रूपी पात्र बाबा के सिग्नल्स, बाबा के डायरेक्शंस, बाबा के डिवाइन थॉट्स अपने अंदर पात्रता हमें तैयार करनी है। बुद्धि को इतना गोल्डन हम बनाना शुरू कर दें योग के द्वारा, श्रेष्ठ विचारों के द्वारा, शुभ संकल्पों के द्वारा, कि जब कभी बाबा के शुभ मना हमारे को डायरेक्शंस मिलने वाले हों, बाबा के श्रेष्ठ हमारे को वरदान मिल रहे हों, बाबा की श्रेष्ठ हमारे लिए कुछ समझाने मिल रही हो, तो वो हम अपने अंदर कैच कर लें। और जितना जितना हम अपने अंदर कैच करते जाएंगे, हम धीरे 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 हम शक्तिशाली आत्मा बनते चले जाएंगे। हम आप अपने से पूछिए, क्या आप बाबा के वरदानों को सेकंड बाय सेकंड अपने अंदर एब्सॉर्ब नहीं करना चाहेंगे? चाहेंगे ना आप? चाहेंगे ना बाबा हमें वरदान देता रहे और हम अपने को वरदानों से भरपूर करते रहें? चाहेंगे ना? लेकिन उसके लिए क्या तैयारी चाहिए? हमारा बुद्धि रूपी पात्र जो है ना, वो अंदर ही अंदर योग और बाबा के साथ इसने, बाबा के साथ निश्चय बुद्धि, इन सब बातों के लिए तैयार हो। कहते हैं शेरनी का दूध जो है वो सोने के बर्तन में ही ठहरता है। इसी तरह से बाबा जो परम पवित्र सत्ता है, जो शक्तिशाली है, वो साधारण नहीं है। उसके करीब आने के लिए हमारा बुद्धि, हमारा मन रूपी पात्र बहुत शुद्ध होना चाहिए। और मन के विचारों को जितना ही हम चैनलाइज करना सीख लेंगे, चैनलाइज करना माना जो हमें बाबा अच्छे अच्छे विचार देते हैं, उस तरह से अपने मन को चलाने का अभ्यास ही बनाते जाएं। मन को श्रेष्ठ विचारों में चलाने का अभ्यास ही बनाते जाएं, तो धीरे धीरे क्या होगा, मन जो है वो चार्ज्ड होता रहेगा। जैसे कि इन्वर्टर में बैटरी होती है ना, तो उसके कंपोनेंट्स डिसऑर्डर में आ जाते हैं तो कहते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गई, और उनको ऑर्डर में लाने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग देनी पड़ती है। इसी तरह से अपने अंदर के विचारों को जो डिसऑर्डर में आ गए हैं, उनको चैनलाइज करना ही ये बुद्धि की श्रेष्ठता है ज्ञान के आधार से। और इसलिए बाबा की मुरली के लिए हम लोग बहुत छात्रक रहते हैं। आज बाबा ने मुरली में क्या बताया देखें तो, आज बाबा ने क्या बताया पढ़ें तो, देखो इसमें ये पॉइंट तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था, ये तो बहुत अच्छी पॉइंट है। तो जितना जितना हम अपनी अंदर के विचारधारा को पॉलिश करते, माना चैनलाइज करते जाते हैं और मन को एक दिशा देते जाएंगे, तो धीरे धीरे हम अपने अंदर के विचारों को शक्तिशाली बनाते जाएंगे और नियर टू गॉड अर्थात हम अपने शिव बाबा के साथ में अपने मन के विचारों को तालमेल बिठाते चले जाएंगे और हम धीरे धीरे उसको सहज रास्ता बना के और अनुभव करते जाएंगे। तो ऐसे हम कहेंगे कि ये बेला है, कौन सी बेला है, ये बेला है 84 अर्थात 5000 वर्ष में ये बेला है अपने को कितना आप ऊंचा उठा सकते हैं। स्पिरिचुअली आप जितना ऊंचा उठा लेंगे, तो ये जो वर्ल्डी अफेयर्स हैं, वर्ल्डी जो थिंग्स हैं, मटेरियल वर्ल्ड है, ये तो आपके पीछे पीछे आना शुरू कर देगा। आप पहले अपने को स्पिरिचुअली हाईलाइट करिए, हाईली अप कीजिए, माना राजयोगी बनके अपने को ऐसा पुरुषार्थ कीजिए कि आपका टाइम नहीं वेस्ट हो, आपके संकल्प वेस्ट नहीं हो, आपका समय नहीं बर्बाद हो, लेकिन आप अपने को धीरे धीरे एक बहुत कंडेंस्ड सोल, शक्तिशाली आत्मा और बाबा की यादों से बहुत भरपूर आत्मा बना के अपने को कीमती आत्मा बनाते चले। और आप अपने खुद के जिम्मेदार हैं। वातावरण तो इसमें मदद करता ही है, संघ भी बहुत मदद करता है। और हम कहेंगे हमारा पिछले जन्मों का किया हुआ पुण्य का खाता भी बहुत मदद करता है, लेकिन उस सब के बाद में आपके अंदर की जो तीव्र इच्छा है, जिसको हम लगन कह सकते हैं, वो जो तीव्र इच्छा है वो आपको सबसे अधिक मदद करेगी। कौन सी तीव्र इच्छा? प्यार का सागर बाप, ज्ञान का सागर बाप, ही इज ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान बाप, जो भाग्य विधाता है बाप, वो खुद कहता है बच्चे में बैठो, तुम चिंता नहीं करो, माना वो इस समय मेरे लिए पूरा निछावर है, तो मैं लेने में क्यों पीछे रहूं? ये मेरे अंदर एक बात आ जाए, आई एम ओनली फॉर हिम। इफ यू लव टू यू योर सेल्फ, अगर आप अपने को प्यार करते हैं तो आप अपना समय बर्बाद करना बंद कर दीजिए और अपने को बहुत डायनेमिक बनाइए। डायनेमिक माना किस मायने में डायनेमिक? कि आप अपने को बहुत बाबा के साथ प्रसन्नचित मुद्रा में उनके इंट्यूशंस लेने में अपने को एकाग्र करते रहिए। धीरे धीरे बाबा की मदद मिलती रहेगी, बाबा आपसे बहुत बड़ा कार्य कराते रहेंगे और हो सकता है कि आप अपने इस जीवन को बहुत सफल ढंग से जी लें और धीरे से आप अपने भाग्य को बहुत ऊंचा बना लें, अपने भाग्य को भर लें और शक्तिशाली बना लें आप अपने भाग्य को। और फिर जिस समय आप ये पुराना चोला छोड़ के जाएं तो आपको बहुत खुशी हो। किस बात की खुशी हो? मैंने अपनी सांसों को बहुत सफल ढंग से जिया, मैंने अपने जीवन को बहुत सफल ढंग से जिया, बहुत मेहनत से जिया। देखो अभी मैं भगवान की याद में, या मैं एक परमात्मा की श्रेष्ठ मणि, या मैं ऐसा कहूं कि मैं इस विश्व के में एक विशेष आत्मा बन के अपने घर वापस जा रही हूं, बोलो उस समय आपको कितनी खुशी होगी, है ना? तो इस समय मौका है। किस बात का मौका है? आप अपने को कितना ऊंचा बना सकते हैं, इस समय मौका है। आप अपने को कितना श्रेष्ठाचारी बना सकते हैं, मौका है। आप देखो, हम तो ब्रह्मा बाबा के जीवन को बहुत सोचते हैं। 60 वर्ष की अवस्था में शिव बाबा ने उनको कैच किया, फिर भी उनको अंदर से ये नहीं आया कि मैं तो बूढ़ा हूं, मैं क्या पुरुषार्थ करूंगा। बाबा पुरुषार्थ में लग गया, अपनी गहरी तपस्या में लग गया बाबा, है ना? तो जीवन को बहुत बहुत कीमती जानो। और फिर ये जो राजयोगी जीवन है, इसको तो बहुत बहुत कीमती जानो और बहुत बहुत सौभाग्यशाली अपने को। बाबा कहते ना, दादियां आपसे मिलती हैं, दादियां क्या कहती हैं? आप बहुत सौभाग्यशाली आत्मा हो जो भगवान के घर में आए हो। ये भी तो आपका भाग्य है ना कि पूरे कल्प में आप भगवान के घर में आ गए, ये बहुत बड़ा भाग्य है। तो अपने जीवन को साधारण नहीं समझना है, भगवान के ज्ञान को भी साधारण नहीं समझना है, इस पुरुषोत्तम संगम युग को भी साधारण नहीं समझना, है ना। कि हम और भी जगह जाते हैं, बाबा के घर में भी आ गए नो, यही सच्चा आबू अब्बा का घर है, जहां आत्मा का बुद्धि का तीसरा नेत्र खुलता है। आत्मा अपने पिता परमात्मा के समीप होती है। और सोचो, जब भगवान हमारे सामने होता है, न जाने हमारे कितने जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं, और हम श्रेष्ठाचारी आत्मा बनना शुरू हो जाते हैं। तो हम आज बाबा का मिलन तो हम दो दिन बाद करेंगे ही 30 तारीख, लेकिन हम अपने जीवन में मधुबन में आने के बाद हर कोई आपसे पूछता है, आपको यहाँ कैसा लग रहा है, जो नए नए होंगे कहेंगे बहुत अच्छा लग रहा है हमको। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि चारों तरफ बाबा की प्यार की लहरें हैं, इसलिए अच्छा लग रहा है। शुद्धता है, पवित्रता है, आचरण में बहुत निष्काम भाव है, लेकिन हम इतने पुण्य के स्थान पर जो पहुंच गए हैं, तो हम कुछ अपने मन के अंदर संकल्प ले लें, दूसरों के लिए अपने लिए संकल्प ले लें कि मैं आज से अपने को एक श्रेष्ठ स्थिति में देखूंगा, शक्तिशाली स्थिति में देखूंगा, कभी अपने को कमजोर नहीं महसूस करूंगा। और जितना जितना आप अपने को संकल्पों के द्वारा शक्ति देते रहेंगे और बाबा के समीप लाते जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपका जीवन नया बन गया है। और सचमुच भगवान आया ही है हमको द्विज जन्म देने के लिए। अर्थात द्विज जन्म माना क्या, कि एक लौकिक जन्म बीत गया लेकिन हमारा ये जो अलौकिक जन्म है ये अर्निंग है, माना हम बहुत बहुत अपना भाग्य प्राप्त कर रहे हैं, हम अपने भाग्य को जगा रहे हैं, ये मान के चले हम। तो जितना जितना हम अपने को रोज एक शक्ति का कैप्सूल देखते रहे, जिसको बाबा सुमान कहता है, मैं बहुत अपने में भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं अपने में श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं वो एक ऊंची आत्मा हूँ जिसको ईश्वर पिता ने चुना है। और ये जो आपका सम्मान है वो आपको इस दृष्टि से भी मदद करेगा, कभी कभी जीवन में चलते चलते कोई ऐसा भी, क्योंकि ये तमो प्रधान दुनिया है, बहुत सारे ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में अभी हमारी प्यारी प्यारी दादी रतन मोहिनी जी, जो बाबा के हस्तों से पली हुई पालना ली हुई, आप सबके बीच में आई हैं, और वो श्रेष्ठ ज्ञान रत्नों से और अपने प्यार की पालना से आपको बहुत अच्छी अच्छी शक्तिशाली बात बता के, ज्ञान की सुंदर सुंदर धारणाएं बता के आपको संभालेंगे। ओम शांति।